इस भजन का अर्थ भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले श्लोक का उच्चारण कर लें, उससे रिलेटेड ही है। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 3, अध्याय का नाम है कृष्ण जन्म और श्लोक नंबर है 11। दोहराएंगे, सह विस्मय उत्फुल्ल विलोचनः हरिं सुतं विलोक्य आनकदुन्दुभिः तदा कृष्ण अवतार उत्सव संभ्रमः अस्पृशतः मुदा द्विजेभ्य अयुतम् आप्लुतः गवाम सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरि सुतं विलोक्या आनक द्वंद्वभिस्तदा। कृष्णा अवतारो उत्सव संभ्रमो अस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो अयुतमाप्लुतो गवाम। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं सुतं विलोक्या आनक दुन्दुभिस्तदा। कृष्णावतारो उत्सव संभ्रमो अस्पृशन् मुदा द्विजोभ्यो अयुत आप्लुतो गवाम। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानक दुन्दुभिस्तदा। कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो अस्पृशन् मुदा द्विजोभ्यो अयुतम् आप्लुतो गवाम। शब्दार्थ बोलिए, सह वह वसुदेव जो आनक दुन्दुभि कहलाते हैं, विस्मय उत्फुल्ल विलोचनः भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने से आश्चर्यचकित आंखें, हरिम भगवान हरि को, सुतम पुत्र रूप में, विलोक्य देखकर, आनक दुन्दुभिः वसुदेव द्वारा, तदा उस समय कृष्ण अवतार उत्सव, कृष्ण के आविर्भाव पर उत्सव मनाने के लिए, संभ्रमः सम्मान के साथ भगवान का स्वागत करने की इच्छा, अस्पृशतः बांटने का अवसर प्राप्त किया, मुदा अत्यधिक हर्ष के साथ द्विजेभ्यः ब्राह्मणों को, अयुतम 10,000, आप्लुतः विभोर गवाम गायें। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार से है, आप लोग दोहराइए, जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित रह गई, उन्होंने परम हर्ष में मन ही मन 10,000 गौएं एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, मानो कोई दिव्य उत्सव हो। कितना सुंदर, अद्भुत नहीं है? यहां एक हुंडी ले जाने में बोलते हैं, फिर से अगले साल हुंडी दे दी, तो जो हुंडी लेगा उसकी कुंडी खुलेगी जीवन की। हम लोगों की कुंडियां जो हैं, या दूसरे शब्द में कुंडली बोलें, जो भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, खुशी खुशी हृदय से, अहो भाग्य समझ करके सेवा में लगता है। जैसे वसुदेव जी जेल के अंदर हैं और क्या कर रहे हैं, मन ही मन में, बाहर नहीं हैं, और 10,000 गौएं मन से ही, उन्होंने पूरा रत्न जड़ित गौएं मन से ही सोच करके दान दे दी हैं। और वसुदेव जी वचन के बहुत पक्के हैं, जब वो बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद भी उन्होंने अपने वचन को फिर तो लाखें गौएं दान में दी। 10 तो जो प्रॉमिस किया था वो तो दी ही। तो कभी भी अगर हमें कोई भक्त सेवा दे तो सोच लेना ये भगवान की तरफ से सेवा आई है और मेरा अहो भाग्य है। जो खुशी खुशी सेवा करता है भगवान की, श्री राधिका रमन जी की, जो खुशी खुशी सेवा करता है राधिका रमन जी की, उसको फिर क्या होता है, उसकी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर उसकी कुंडली भगवान बदल देते हैं, उसकी कुंडी खोल देते हैं। तो इसलिए कभी भी नहीं समझना चाहिए फिर से अगले साल हुंडी सेवा दे दी, फिर से अब अभिषेक के लिए बोलेंगे, फिर से इसके लिए बोलेंगे। तो इतना तकलीफ अगर है तो भगवान बोलते हैं फिर ठीक है बेटा, आप सेवा से फिर दूर रहो, फिर माया की सेवा करो। फिर 10,000, 20,000, 30,000 में प्रभु जी ऑफिस जाना है 6 बजे, क्योंकि फिर वहां, क्योंकि 30,000 में संपूर्ण रूप से खरीद लिया हमें, 14 घंटे आना जाना, 3 घंटा 17 घंटे फिर वहां की सेवा में लगा देंगे, अगर मन नहीं है तो, याद रखना। तो बड़े ही मन से, उत्साह से, सौभाग्य समझ करके ये सेवाएं करनी चाहिए। और सच में केवल भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से आपके सारे के सारे अमंगल के द्वार खुल जाते हैं। हम लोग सेवा में लगते नहीं हैं, है कि नहीं? और सेवा मिल जाए तो उसको भी बेमन से स्वीकार करते हैं, अंदर बहुत कुछ अपनी बुद्धि उसमें लगा लगू करके। जब तक विमल बुद्धि नहीं होगी, शुद्ध बुद्धि, तो वो क्या होगा, वो जो है उल्टा ही सोचेगी। जैसे दुष्ट मन, ये हमेशा उल्टी चीजों में ही जाता है और हर व्यक्ति के बारे में निगेटिव ही सोचेगा वो, है कि नहीं? पूरा ही निगेटिव। तो वह हर चीज को, इसलिए कलयुग में, कलयुग के जीव जो हैं वो हृदय में मैल है बहुत अच्छे से, तो उस मैल के कारण वो सब के अंदर, याद रखना, एकाध दो के अंदर गलती दिखाई दे स्वाभाविक है, लेकिन अगर सब में गलती दिखाई देगी अगर, तो समझ लेना फिर अपने में गलती है, फिर बहुत बड़ा डिजीज है। जब सभी गलत दिखाई दे रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर तो दिखाने की जरूरत है, ज्यादा माला की जरूरत है, ज्यादा वैष्णव संघ की जरूरत है, ज्यादा सेवा की जरूरत है। तो कितना सुंदर बात, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वसुदेव को अपने विलक्षण पुत्र को देखे जाने पर जो आश्चर्य हुआ उसका विश्लेषण किया है। क्यों नहीं आश्चर्य हो, वो भगवान जिनका शेष, महेश, दिनेश, सुरेश, ठीक है कि नहीं, और उन्हीं के विस्तार अनंत शेष अपने अनंत मुखों से, अनंत समय से, उन अनंत का अनंत समय से गुणगान कर रहे हैं, और जो कभी अंत नहीं होता है, जब तक उतनी लीलाएं बोलते हैं तब तक अनंत और हो जाती हैं, वो पार नहीं पा पाए। और ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए भी जो बड़ा आश्चर्यजनक है, जिनकी, जिनका प्रकट होना और जिनका पृथ्वी पर आना, या उनके केशव तुया सृष्टि विचित्र, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं कि हे केशव आपकी सृष्टि अद्भुत विचित्र, तो इसको तो देख करके ही आदमी तो ऐसे ही करते रह जाएगा आंखें फाड़ फाड़ के ही। और सृष्टि बनाने वाला व्यक्ति अगर आ जाए सामने और वो भी पुत्र के रूप में आ जाए, आहा फिर क्या कहा जाएगा पहले बताइए आप, सोच सकते हैं मन की, कहते हैं ना आज कुछ और भी मांग लेता तो वो भी, तो अब उसके बाद फिर और मांगने की कोई जरूरत है ही नहीं है, सब कुछ और भी वही है, अनलिमिटेड भी वही है, सर्व सौंदर्य सर्व खलविदम ब्रह्म, सभी स्रोतों के स्रोत सभी कारणों के परम कारण सामने आपके आ गए, वो भी एकाध जन्म में नहीं, भगवान याद दिला रहे हैं कि मैंने जो वचन दिया था मैं पूरा कर रहा हूं। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प, वो जो बोलते हैं उसको पूर्ण करते हैं। सत्य संकल्प मतलब भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारे घर में 3 दफे आऊंगा, तो बता रहे हैं याद दिला रहे हैं वसुदेव जी को, पहले जन्म में जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति, तुम प्रजापति थे, प्रश्नी और सुतपा उनके यहां में प्रकट हुआ, किस रूप में, प्रश्नी गर्भ के रूप में। दूसरे जन्म में आप फिर से अदिति और कश्यप बन के आए थे, माता देव की अदिति और आप कश्यप बन के, और वहां में किस रूप में प्रकट हुआ, वामन के रूप में प्रकट हुआ, और अभी तीसरी दफे मैं स्वयं जो है ये प्रकट हो रहा हूं, है कि नहीं। तो भगवान वसुदेव के सामने जो प्रकट हुए वो चतुर्भुज रूप में विष्णु प्रकट हुए, क्योंकि वसुदेव जी ने विष्णु जी की आराधना की थी, विष्णु को ही पुत्र रूप में मांगा था। तो भगवान सत्य संकल्प हैं और वचन दे रहे, वचन को पूरा किया हुआ याद दिला रहे हैं, मैं तीसरे जन्म में भी आपके सामने प्रकट हूं। तो वसुदेव जी प्रार्थना किए कि आप, देवकी जी भी, कि आप जिस रूप में हमने आपको चाहा था बाल रूप में, और तुरंत भगवान बाल रूप में आ गए, और उस बच्चे के भी 4 हाथ हैं, साधारणतया किसी बच्चे के 4 हाथ होते हैं, ये ताली इसलिए बजाई नींद से जगाने के लिए, कुछ लोग एकदम, किसी ने कहा कि प्रभु जी सत्संग में नींद क्यों आती है, जबकि पिक्चर हॉल में 500 रुपए का टिकट देके भी नींद नहीं आती है कि नहीं। तो उत्तर यही है, फूलों की सेज में तो नींद ही आती है ना, कांटों की सेज में नींद कहाँ आएगी, जिस पिक्चर को आप सोच रहे हो अच्छा वहां तो वो कांटे ही कांटे हैं, परिणाम भी कांटा, देखना भी कांटा, वैसे भी तो क्योंकि आदत बनी हुई है इसलिए वो लग रहा है। तो ये फूलों की सेज है, सतोगुण में आकर के नींद उस व्यक्ति को नहीं आएगी जो सतोगुण में हो। तो हम लोग मिश्रित हैं, कभी के सर थोड़ा रजोगुण भी है, थोड़ा तमोगुण भी है, थोड़ा बहुत सतोगुण, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं वो सतोगुण वाला है, दिव्य सतोगुण वाला वो भी, लेकिन हमारा बॉडी जो है इतना वो हो गया है माया में लिप्त, तो मिश्रित है वो, तो कभी झपकी आ जाएगी, कभी ये हो जाएगा, शरीर बॉडी कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना। लेकिन अर्जुन गुड़ाकेश हैं, इतना युद्ध करने के बाद भी रात्रि को अर्जुन पता है क्या करते थे, रात्रि को भी वो कृष्ण की सेवा करते थे, और फिर भी उनको नींद नहीं आती थी। यहां तक कि एक दफे दुर्योधन ने सोचा कि इस वक्त ही मार दो इनको, जब सोए हैं, तो अपनी सेना को बोले कि जाओ अटैक करो, तो देखा गया कि अर्जुन जगे हुए थे उस वक्त में, भगवान का चिंतन कर रहे थे, क्योंकि ये शरीर के कारण जो हैं हमारा, ये नींद, आलस, प्रमाद, भूख, प्यास, ये सब है शरीर के अटैचमेंट के कारण। जब शरीर जो है क्या हो जाएगा, दिव्य स्तर पर आ जाएगा, जैसे पका हुआ नारियल, पके हुए नारियल को आप एक चोट मारो टन करके खड़खड़ खड़खड़ खड़ बाहर का बाहर हो जाता है, अंदर का अंदर। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो पके हुए नारियल की तरह, शरीर तो धारण किया रहता है लेकिन अंदर से उससे चिपका हुआ नहीं है, लिप्त नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को निद्रा और ये संसारिक जो शरीर की वस्तुएं हैं, शरीर को जिससे सुख मिलता है, वो चीजों से उसको सुख मिलता ही नहीं है, वो आत्मानंदी है, आत्मा रामस्य मुनयः, वो सदा मुनि का मतलब विचारवान, वो सदा कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का विचार करता है। तो ऐसी स्थिति में भी अर्जुन पता है क्या किए, युद्ध किए और वो सेना उबासी, बता रखा उबासी, महाभारत में उबासी ले रही थी दुर्योधन की, और उनका मन ये कर रहा था भाई यहीं सो जाएं, अब तो मर भी जाएं तो नींद आ जाए बस। तो उस वक्त अर्जुन पता है क्या बोलते हैं उस सेना को, दुर्योधन की सेना को, कोई बात नहीं तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर जब जग जाओगे फिर युद्ध करेंगे। मतलब जो विपक्षी सेना को भी अपना शत्रु ना माने वो कितना जितेंद्रिय होगा आप सोचिए। इसलिए अर्जुन स्वर्ग में भी गए तो वहां पर भी किसी चीज से प्रभावित नहीं हुए। और इसीलिए जब अर्जुन ब्रहन लला के रूप में विराट के यहां जब उसकी पुत्री को भी सिखा रहे थे तो पुत्री बिल्कुल पूर्ण रूप से फिदा हो गई थी, पागल हो गई थी, मर जाएगी नहीं तो अगर उनके बिना, उस रूप में देखने लग गई थी। लेकिन विराट जी ने जब बोला कि मैं अपनी पुत्री को देना चाहता हूं आपको, तो बोले ये तो मेरे से, मैंने इसको सदा अपनी पुत्री के रूप में, पुत्र वधु के रूप में देखा है, मेरा तो ऐसा कभी भी मन हुआ ही नहीं। तो सोचिए सपने में भी, मतलब इतना इतना चरित्रवान होते थे कि उनको बोला जा रहा है फिर भी वो बोल रहे नहीं मैंने अपने पुत्र वधु के रूप में। तो सोचिए तब कितना विश्वसनीय है। आज व्यवहार के कारण, रजोगुण तमोगुण में लिप्त होने के कारण, शरीर से अटैच होने के कारण हम झूठे भी हैं, हम सत्य संकल्प भी नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है, जो बोला वो तुरंत भूल जाएंगे, फिर आगे उसको करेंगे नहीं करेंगे, लेने के बाद वापस नहीं देंगे, तो इसीलिए किसी पर विश्वास ही नहीं किसी का भी। और उसका एक ही कारण है कृष्ण भावना की कमी। इस संसार में सब कुछ है आपके पास, झूमर भी हो जाएंगे, बड़े बड़े घर भी हो जाएंगे आपके पास, हजारों 50-50 हजार की घड़ी भी हो जाएगी, लोग राडो तक की घड़ी, 1-1 लाख की घड़ियां आती हैं, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा उन चीजों से सुख मिलने वाला नहीं है, परमानेंट सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। और जब आपको आनंद नहीं होगा तो दूसरे कैसे आनंदित होंगे बताइए आपसे, या आप पर कैसे विश्वास करेंगे, आपको अपने पर विश्वास नहीं है तो दूसरा क्यों आप पर विश्वास करे। और वसुदेव जी विश्वास के लिए बिल्कुल ऐसे थे, कंस तक असुर किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। असुरों की फिलॉसफी है, फिलॉसफी ये क्या है, बाप पर भी विश्वास नहीं करना। एक दफे किसी ने राजनेता का अर्थ बताया था, राजनेता का क्या अर्थ है, बोले रौ से राक्षस हो नंबर एक का, जौ से जंगी हो, मैदान में चाहे जीते हारे लेकिन हैं ऐसे मुंह फाड़ के दांत दिखाए बस जंगी, और नौ से एकदम बिल्कुल उसको बड़ा निम्न शब्द कहा है, नंगा बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और तौ से तिकड़मबाज। तो किसी राजनेता के बेटा ने बोला पिताजी मैं भी राजनेता बनना चाहता हूं आपकी तरह, बोले बिल्कुल बनो बेटा, बोले पहली शिक्षा क्या है मुझे शिक्षा दीजिए, बोले ठीक है छत पर चढ़ जाओ, बोले ये, बोले बोल रहा हूं तुमने बोला तो फिर, बोले नीचे कूदी मारो मैं तुम्हें पकड़ूंगा, बोले पक्का ना, बोले विश्वास नहीं है पिताजी पर, बोले बिल्कुल है। उसने कूदी मारी ये हट गए, उसका अंचर पंचर सब टूट गया। बोलता है आप बाप हो कि मेरे शत्रु हो, बोले यही पहली शिक्षा थी, बाप पे भी भरोसा मत करना। तो ये संसार में सिखाया जाता है, असुरों की नीतियां हैं, असुर बाप पे भी भरोसा नहीं करते हैं लेकिन वसुदेव पर भरोसा है उनको, कंस को भी। और उनने जो है बोले ठीक है आठवें से मेरे को प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये करूंगा। मतलब कितना, इसीलिए आंख मूंद के ट्रस्ट जो है ये तभी हो सकता है जब उस प्रकार का व्यक्ति हो, वैसा भजन हो, जो भक्ति करेगा, जो शांति से 16 माला करेगा, मंगल आरती अटेंड करेगा, भागवत क्लास सुनेगा, उसके अंदर ये दैवी गुण स्वतः ही यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणास्तत्रे, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, समासस्ते सुराः, वो सुर बन जाते हैं सब, आसुरिक गुण हट जाते हैं, हरा भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बही। लेकिन उनके अंदर ये गुण कहां, जो कृष्ण भावना में लगे नहीं है तो कुछ नहीं करना अलग से, बढ़िया से माला करनी है, शांति से कथा सुननी है, भगवान का दर्शन करना है, ये सारे के सारे गुण आपके अंदर स्वतः ही आ जाएंगे, स्वतः ही इनबिल्ट। तो इस प्रकार से वसुदेव नवजात शिशु को बहुमूल्य वस्त्रों तथा रत्नों से आभूषित देखकर आश्चर्य से कांप रहे थे। स्वाभाविक है, ऐसा आश्चर्य होना ही चाहिए। एक तो पुत्र के रूप में आए हैं, एक तो भगवान आए हैं, उनने वचन पूरा किया है, चतुर्भुज रूप में थे, फिर बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं, और भगवान ही उनके पुत्र के रूप में आ जाएं, उस व्यक्ति के लिए कितना ज्यादा सुकून और कितना शांति। और जैसे इस संसार में लोग ऊटी, गोवा, मंसूरी, स्विट्जरलैंड घूमने की बड़ी आशा रहती है, एक दफे स्विट्जरलैंड देख लूं तो जीवन धन्य हो जाएगा, है कि नहीं। जिन्होंने सब कुछ बनाया, अखिल ब्रह्मांड नायक, तो उनके साक्षात जो सब कुछ सर्व खल विदम ब्रह्म सामने हैं, तो वसुदेव जी की आंखें क्यों फटी की फटी नहीं रह जाएंगे बताइए, क्यों आश्चर्य से भरी नहीं जाएंगी। इसको विस्फोटित हो रही हैं, विस्फोटित मतलब खुली की खुली, ऐसा लग रहा है जगन्नाथ जी की तरफ खुलती ही जाएंगी, आंखें बड़ी हो जाएंगी। विस्फारित का मतलब यही है, हो गया, पता नहीं कितनी देर के लिए वो अब विस्फारित होंगे। जैसे गोपी बोलती हैं श्रीमती राधा रानी को, आपने सुना है होगा, ये फिर से सुने कि हे राधे, मुझे कृष्ण का दर्शन करना है, बहुत दिन हो गए ब्रज में, लेकिन मैंने कृष्ण का साक्षात दर्शन नहीं किया है। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है, कल इस जगह बंसी भट्ट पर यहां पर आ जाना। सवेरे गई और वहां पर कृष्ण का दर्शन जो है, अनेक गोपांगनाएं श्रीमती राधा रानी कर रही थी, बोले ये रहे कृष्ण। तो देखने लगी कृष्ण को, तो नजर कहां पड़ी, सुंदर कुंडल नैन विशाला, गल सोहे बैजंती माला, कुंडल पर पड़ी बस नजर। और बताता है, बताया गया है कि वहां पर युग व्यतीत हो गया, एक युग के बाद ऐसे राधा रानी को स्मरण आया, बोले हरि बोल, बोले क्या हुआ देखे, बोले कहां, अभी तो कुंडल पर ही नजर पड़ी थी, मतलब कुंडल में ही फंसी रह गई, कुंडली इतने सुंदर, अभी कान देख लेती अच्छे से तो क्या होता, कान कितने सुंदर, और अगर बालों का गुच्छा अगर देख लिया होता, और प्रफुल्लित मुखारविंद, दो रस के भरे हैं कपोल, भरे भरे गालें, और उसमें भी पान खाते हुए और लाल लाल, और जब हंसते हुए भगवान के दो दांत, जैसे आप राधा रमन जी के दांत देखते हैं ना, आपको पता है किसी ने कहा प्रभु जी लगाते हैं, मैंने कहा लगाते नहीं है, किसी दिन चार दांत दिखते हैं, किसी दिन छह दांत, किसी दिन दो ही दिखते हैं, किसी दिन बिल्कुल गंभीर अवस्था में एक भी दांत नहीं दिखाई देता है, राधा रमन वही है। आजकल बहुत जूम करके ना फेसबुक पे इस पे डालते हैं, तो आप देखिए कितने प्रफुल्लित ढंग से भगवान जो हैं हंसते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं। तो सोचिए मुखारविंद देख लिया होता तो क्या होता, बोले अनंत जन्मों के लिए फ्लैट हो गए वहीं पर, बस हरि वो सब कुछ भूल गए, शुद्ध विसरा गयो मोरी रे, सब कुछ भूल गए, फिर कुछ याद ही नहीं है। बोले उसके बाद याद करने की और जरूरत क्या है, कुछ है कि नहीं, मेरा पेन कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, ये कहाँ है, खाना भी खाया न खाया, सब कुछ तो तज्जो अपि अपवर्ग बोलते हैं वर्त श्रद्धा भक्तिर अनुक्रमस्यति, जो ज्यों भोजन का ग्रास व्यक्ति के अंदर जाता है त्यों त्यों तृष्णा का अनुभव करता है, उसकी भूख मिटती है, सब कुछ। तो ज्यों ज्यों भक्ति आप ज्यों ज्यों माला करते हैं, ज्यों ज्यों कथा सुनते हैं, ज्यों ज्यों दर्शन करते हैं, ज्यों ज्यों गुरु गुरांग की सेवा में लगते हैं, त्यों त्यों आप क्या होते हैं, आनंदित होते रहते हैं, वो आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, वो घटता ही नहीं है। तो इस प्रकार वे तुरंत समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, अपितु चतुर्भुजी भगवान है। वे अपने आदि रूप में पूरी तरह अलंकृत होकर हुए थे, प्रकट हुए थे। पहला आश्चर्य यह था कि कंस के उस बंदी ग्रह में जन्म लेने से भगवान डरे नहीं, जिसमें वसुदेव तथा देवकी बंद थे। भगवान क्यों डरें, उनका नाम है अभय चरणार विंद रे, है कि नहीं? अभय, सारे जो अभय प्रदान करते हैं इसीलिए उनका नाम ही है अभय। जो भय रहित हैं या जिनकी शरण लेने से भय फिर भाग जाता है, न तो मृत्यु का भय रहता है, क्योंकि व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है मृत्यु केवल शरीर की होती है, मैं तो कभी मरता ही नहीं, है कि नहीं? जब मैं मरता ही नहीं तो फिर शोक या दुख किसके लिए, या परमाणु बम फूट जाए, विश्व युद्ध हो जाए, संसार में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। तो आगे बोलते हैं, सर्वव्यापी परम ब्रह्म होते हुए भी वे देवकी की कोख से पैदा हुए। इस संसार में जेल का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं। डरते हैं कि नहीं करते हैं? बोले बताइए आप जेल की बात करो, पुलिस की बात करो, तो आदमी फिर उस लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता है, डरते हैं। और कोई बोल दे कि आपको जेल ले जाया जाता है, आधे लोग तो वहीं पर मलमूत्र त्याग देते हैं। सही में अब क्या होगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, अब तो मैं गया, कितनी बेइज्जती होगी, पता नहीं उसके बाद क्या, अब मेरा क्या होगा अंदर, मैं तो इतना ज्यादा वस्तुओं से आसक्त हूं, ऐसे डनलप के गद्दे में वहां कहां सोना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? टॉयलेट में लाइन लगाओ, काम करो। जेल के नाम सुनते ही तो जयति जन निवासो देवकी गर्भवासो, लेकिन भगवान जो हैं देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, तो देवकी के गर्भ की भी देवता लोग प्रशंसा कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं, बोले देवकी के गर्भ की भी जय हो। गर्भ की निंदा की जाती है, गर्भ में अगर कोई आए संसार में, लेकिन ऐसा गर्भ में आने की स्तुति की जा रही है नहीं? क्योंकि इस भगवान जिस गर्भ में प्रकट हुए, इस गर्भ की लीला सुनने मात्र से, इस जेल की लीला सुनने मात्र से, आपको पता है जन्माष्टमी में मंदिर भी जेल की तरह ही हो जाते हैं, चारों तरफ बल्लियां ही बल्लियां, ये वो सब वो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। लेकिन जो जेल से जो उनके जन्म कर्म के बारे में जान लीलाएं सुनता है भगवान की, या उनकी सेवा करता है, तो वो व्यक्ति इस जेल के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान को कहीं पर भी जेल में जाना हो, कहीं पर भी हो, उन्हें भय नहीं रहता है। इसलिए यहां पर वो डरे नहीं, भगवान डरे नहीं लिख रखा है, तो उसके ऊपर में इतनी चीज बताया है। तो इसीलिए सर्वव्यापी परम ब्रह्म होते हुए भी देवकी की कोख से पैदा हुए, ये भगवान का कितना बड़प्पन है, कितने डाउन टू अर्थ हैं वो, है कि नहीं? समा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का घट गयो विष्णु को जो भृगु ने मारी लात। भगवान कितने विनम्र हैं अपने भक्तों के लिए, आगे अभी आएगा, इसके आगे देखिएगा उसका, उनका बारे में वर्णन करेंगे। अपने भक्तों के लिए भगवान उनका मल भी पोछते हैं, मलमूत्र पोछ के उस जगह को साफ करके और उसके कपड़ों को साफ कर, जैसे माँ अपने बच्चे का करने में माँ को भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन दूसरे का बच्चे अगर हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है मलमूत्र पोछना दूसरे के बच्चे का। लेकिन भगवान अपने भक्तों का मलमूत्र, भक्त परमेष्ठी जो दिल्ली में ही रहने वाला था, दर्जी परमेष्ठी दर्जी जगन्नाथ जी स्वयं उसका मलमूत्र पोछने के लिए जो है, पता है आप लोगों को, कितनों को पता है ये घटना? बाहर से आने वाले भक्तों को ज्यादा पता है, वेरी गुड, आप लोगों के लिए तालियां, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वेरी गुड, और गंभीरता से लेते हैं कि हम तो माया में हैं, बाहर हैं, भक्त लोग तो फुल टाइम है, कितना समय है, अच्छा है, कभी कभी ज्यादा चिंतन होता है। तो अभी बताएंगे परमेश्वरी जी के बारे में। तो देवकी के कोख से पैदा हुए, तीसरा आश्चर्य यह है कि कोख से जन्म लेने वाला बालक इतनी अच्छी तरह अलंकृत था, यह साधारण नहीं है। चार हाथ होना, पूरे के पूरे बाल होना एकदम, है नहीं? और क्या होना, उनके बहुमूल्य वस्त्र पहने, वस्त्र पहना हुआ, दांत निकला हुआ, कहां दांत निकले होते हैं, बाल बिल्कुल बहुत कम बच्चों के बाल होते हैं, दांत नहीं होते हैं, ठीक है कि नहीं? चार हाथ कहां होते, और पूरा का पूरा क्या है वो जो है, अलंकृत, अलंकारों से ढका हुआ, अलंकार लगे हुए हैं। चौथा यह कि भगवान तो वसुदेव के आराध्य देव थे, फिर भी वे उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इन्हीं कारणों से वसुदेव अत्यधिक हर्षित थे, अतः वे क्षत्रियो की तरह पुत्र का जन्मोत्सव मनाना चाह रहे थे, क्योंकि क्षत्रिय जो हैं क्षत्रिय रीति से बहुत, जो उसमें भी जो राजा हो विशेषकर, वो तो इतना सभी प्रकार सभी वर्ग के लोगों को शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक वो पूरा मालामाल करके रख देता था एक पुत्र के उत्पन्न होने में। और जहां क्षत्रिय भगवान का परम भक्त हो और वहां उस भक्त के घर में साक्षात भगवान आ रहे हों, आ गए हों, तो उसका क्या मन होगा पहले बताइए। तो वसुदेव जी बिल्कुल दया से और देने के उससे एकदम भर गए, और किंतु बंदी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने यह उत्सव मन ही मन मना लिया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, यदि कोई भगवान की सेवा बाह्यतः नहीं कर सकता तो मन ही मन में उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मन के कार्य अन्य इंद्रियों के कार्यों के ही समान होते हैं। तो भगवान मन की सेवा भी, आपका फिजिकल बॉडी में क्या है, जब आप भक्ति में उन्नत होगे तो आप बाहरी बॉडी का उतना ध्यान नहीं दोगे कि कितना मोटा है, कितना पतला है, लंबा है, ठीक है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि सेठ है, गरीब है, क्या है, फिर वो ध्यान नहीं। अंदर आपका चिंतन क्या चल रहा है, बाहर से आप कितने ही डेकोरेटेड क्यों ना हो, एकदम बिल्कुल मटका सिल्क पहन करके, है कि नहीं, बहुत अच्छे स्मार्ट लग रहे हो, तो जरूरी नहीं कि भक्ति में अंदर भी वैसा ही चिंतन भी होगा। तो कपड़ों से या आश्रम से, या कोई सोचे संन्यास ले लिया है तब ज्यादा चिंतन हो रहा होगा, ठीक है कि नहीं। अब किसको कितना चिंतन होता है ये तो भगवान ही जानते हैं अच्छे से, उनसे ज्यादा या मैं जानता हूं या फिर भगवान जानते, या मैं जानू या वो जाने और कौन समझ सकता है बाहर है कि नहीं। कलयुग तो वैसे भी दिखावे का युग है, अंदर क्या क्या। तो ये भक्त परमेष्ठी जो है, मन की बात आई यहां पर, वसुदेव जी मन से ही जो है 10,000 गौएं दान में दे दिए। तो जब दान की बात आती है तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं यज्ञ दान और तपस्या जो है वो पावनानी मनीषिणाम, मनीषिणाम मतलब मुनियों को भी, विचारवान व्यक्तियों को भी, साधु को भी यज्ञ दान और तपस्या नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ का मतलब जप करना और जप करवाना, दान लेना, दान देना, साधु हरि कथा दान में देता है, ज्ञान देता है, भक्ति में लगाता है। और गृहस्थ का सबसे प्रिय है धन, और उससे निकालता है वो, उसके अंदर जो रावण वाला विचार है उसको भोगने का, उसको असली में भगवान की सेवा में लगाता है, जैसे तैसे आधा घंटा प्रवचन दे करके, दान की महिमा बता करके। प्रभु जी आप बड़े चतुर हो, निकाल ही लेते हो। मैंने कहा यस, मैं कैसा एजेंट हूं फिर भगवान का जो निकाल नहीं पाऊं आपसे, आपको उनकी सेवा में ना लगा पाऊं। मैंने कहा आपने बच्चों के लिए जितना खर्चा कर दिया, एक पैसा वापस नहीं आने वाला, बल्कि उसमें दंड भी मिलेगा, अगर कुछ गलत में जगह लगाया तो उसे दंड। जितना संसार में ये गिफ्ट दिया, ये किया अपने शरीर के लिए, उसमें फल और दंड दोनों, हरे कृष्णा, फल और दंड दोनों मिलेगा, वो वापस आने वाला नहीं है। जो भगवान की सेवा में लगाया वही रिटर्न आने वाला है, बाकी आने वाला नहीं है। ये जो तपस्या भगवान के लिए की, 4 बजे उठे माला करने में, इधर उधर फेसबुक व्हाट्सएप नहीं देखा ज्यादा, ठीक है कि नहीं। माला के समय क्या किया, माला की बढ़िया से, और तो ये तपस्या है। जिस वक्त भगवान के लिए बोलना, भगवान की बात करना, भगवान का चिंतन करना, वाणी की तपस्या, तो ये तीनों चीजें यज्ञ दान तपस्या जो है ये पावनानी, ये मुनियों को भी पवित्र बनाती है, सदा इसको करना चाहिए। तो इसीलिए एक मेरे को एक घटना याद आ रही है, एक शिष्य थे, एक साधु किसी नगरी में रहते थे और भक्ति के गीत गाते थे, लोग उनका सम्मान भी करते थे और बड़ी सारी वस्तुएं उनको दान में देते थे, ये चढ़ावा वो चढ़ावा। तो एक दिन साधु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा यहाँ लोग बड़े आसक्त हो रहे हैं और हम भी यहाँ इनके दान दूध वूध सब बड़ी सेवा करते हैं, थोड़ा स्थान बदल देते हैं, चलो ठीक है कि नहीं, चलो किसी दूसरे नगर में। शिष्य ने कहा, गुरु महाराज यहाँ चढ़ावा इतना ज्यादा आता है, कुछ पैसे जमा हो जाए फिर चलें। बोले, बदमाश तेरे को पैसों की पड़ी हुई है, कुछ भक्ति जमा हो जाए कहता तो मैं भी कहता। गुरु ने कहा, पैसे जमा करके क्या करेगा, चल मेरे साथ, पैसे जमा नहीं करने हमें। शिष्य को तो उल्टा ही लगेगा, क्या गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, इतना बढ़िया था यहाँ पर, सब लंबा दंडवत भी मारते थे, कितना नाम था अपना। लेकिन गुरुजी ने कह दिया, आप कहना मानना पड़ेगा, चल पड़े दोनों। शिष्य ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, गुरुजी ने बोला था यहाँ का सारा यहीं लगा के जाना है, कुछ पैसे नहीं रखने अपने पास, फिर भी इसने छुपा छुपू करके, इनको क्या पता, ठीक है कि नहीं, कुछ पैसे रख लिए थे, अपनी धोती में बांध के रखा था। चलते चलते मार्ग में नदी पड़ गई, गुरुजी ने मना किया था मत रखना। एक नौका वहां थी, नौका वाला पार ले जाने के लिए दो आने मांग रहा था, दो आने उस वक्त में। साधु के पास पैसे नहीं थे, शिष्य देना नहीं चाहता था, ठीक है कि नहीं, शिष्य देना नहीं चाहता था। दोनों बैठ गए, दोपहर हो गई, संध्या हो गई, रात हो गई, सब बैठे थे। रात को नाव वाले ने बोला, भाई मैं घर जा रहा हूं और यहां बड़े बड़े रात को शेर आते हैं इसके तट पर पानी पीने के लिए, सोच लो आपको क्या करना है, आना है कि नहीं आना, मैं जा रहा हूं। शिष्य ने कहा, हमें भी पार ले चलोगे? बोले, बिल्कुल ले चलूंगा, लेकिन बिना पैसे के नहीं ले चलूंगा, अभी भी सोच लो। तो शिष्य को सिंह के विचार से डर लगा, बोले शेर आ जाएगा कहीं मार देगा। अब ये अपनी धोती में से अंटी में से निकाल रहा है थोड़ा, ठीक है, और धोती से चार आने निकालकर बोला, अच्छा नहीं मानते तो ले लो। नाविक ने चार आने लिए, उन्हें पार ले गया और दूसरे पार ले जाकर शिष्य ने कहा, देखा गुरुजी, आया ना, आए तो पैसों से ही, आप बोल रहे थे कि पैसों की क्या जरूरत है, पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, अभी पैसा काम आया ना, इकट्ठा किया था मैंने, ठीक है कि नहीं, आप तो बोले थे पैसा इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, सोच कर देख बेटा, थोड़ा सोच के देखो, पैसा एकत्र करने से तुम्हें सुख नहीं मिला, पैसे को देने से सुख मिला, सुख त्याग में है, इकट्ठा करने में बोलो नहीं है। तो ये हमें भी सोचना है इन घटनाओं से, कि इकट्ठा करे रखें और वहां मर गए, शेर आ गया खा गया तो क्या फायदा, वो बच्चे लोग शेर के जैसे खा जाते हैं पैसों को, और उन पैसों को कहां लगाएंगे, उसका भी दंड हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि कमा के हम गए थे। तो इसीलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, वो अपना कमाएंगे, पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया, सेटअप कर दिया, हो गया, अब आगे भजन करें, अपना भजन करके दान पुण्य में भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए उस धन को। ऐसा नहीं कि 10-10 घर जो हैं वो मरते वक्त तक किसी के नाम ही नहीं करके जाएं, बाद में फिर पुत्र पुत्रियां लड़ रही हैं, थोड़ा होशो हवास में सब करके चले जाना चाहिए सारा। तो इस प्रकार से गुरुजी बोलते हैं, त्याग में आनंद है, देने में आनंद हुआ, जब दिया तो ही पार हुए, खाली इकट्ठा किया हुआ था तो पार कहां हो रहे थे। तो ये समझने की बात है। तो दान जो है वो कभी भी, अभी जन्माष्टमी आ रही है, हमें भी खुल करके, यहां तक कि भगवान खुद अपने आचरण से, जब उनकी दिनचर्या में आप पढ़ेंगे तो प्रतिदिन स्नान के बाद में, खुद ध्यान लगाने के बाद में, वो पहला काम उनका था 13,084 गायें पूरी रत्न जड़ित कपड़ा, सुंदर वस्त्र, और उनके खुर जो हैं चांदी से मढ़े हुए, 13,084 गायें भगवान गृहस्थ रूप में द्वारिका में खुद दान में देते थे हर दिन। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो इसीलिए एक गृहस्थ व्यक्ति को अपनी तरफ से उसका सबसे प्रिय धन होता है। जब आप भगवान की सेवा के लिए, राधिका रमन के लिए प्रतिदिन फूल आते हैं, देखिए कोई व्यक्ति ये भी कर सकता है कि पूरे महीने के जितना पूरे ऑल्टर में फूल आते हैं उसका मेरी तरफ से, जिंदगी फूलों से महक जाएगी, सारा धन उन्हीं का तो है नहीं। तो साल में एक दफे भगवान के पूरे तीनों के लिए, और प्रभुपाद जी के वस्त्र जो है ये है, कोई व्यक्ति सोचे कि जितने भी मंदिर में भक्त हैं ऊपर से लेके तक ब्रह्मचारी से लेके गृहस्थ तक सब के लिए मैंने क्या करना है, धोती कुर्ता अच्छा वाला देना है, एक बिट बैग देना है एक समय, ये मेरा उसमें आए ये और एक दिन मुझे महीने में या साल में एक दफे मैंने प्रसाद देना है, मेरी तरफ से भक्त लोग जो हैं वो प्रसाद पाए, इससे जीवन धन्य होगा। नहीं तो वकीलों के पास, दवाइयों के पास, डॉक्टरों के पास, कोर्ट वालों के पास, ये तो सब जगह जा ही रहा है पैसा, नहीं तो अपने लोग खींच खांच के ले जाएंगे, यानी तो कोई चोरी करके ले जाएगा, बड़ा कष्ट होता है। तो वसुदेव जी से ये सीखना है। और मन ही मन, मन की भक्ति का मतलब क्या है, मन से भी की हुई भक्ति जो अंदर से चिंतन करते हुए वो भगवान ज्यादा याद करते हैं। तो भक्त परमेष्ठी जो हैं, वो दिल्ली में रहता था, बहुत अच्छा कपड़ा सिलता था, एक से अच्छे बेल बुटन और उसमें अलंकार, जैसे इसमें अलंकार कर रखे ना, वो कपड़े में ये करना बहुत अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन, डिजाइन है, कढ़ाई, कढ़ाई, ठीक है कि नहीं, बहुत अच्छा जानता था। तो दिल्ली का जो मुसलमान राजा था वो जो है उसने सुना था, वो इतना बढ़िया मखमली कपड़ा, खुशबू आ रही थी जिसमें इत्र की, बहुत ही कॉस्टली कपड़ा लेके गया, उसने खुद वहां गया, उसने बोला कि ऐसी आकृति, ऐसा डिजाइन बनाओ इसमें, मेरे लिए दो तकिया बनाओ तुम, एक मेरे नीचे रखी जाएगी, एक मेरे पीछे, और जिसमें मैं बैठूंगा, और जब बैठे वो तकिया इतना बड़ा हो दूर से ही उसके अलंकार नजर आए, और आज तक तुमने दूसरे के लिए नहीं बनाया हो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो इतना तुमको धन धान्य से भर दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसने बोला, ये मन ही मन सोचने लगा, वो चला गया कि ऐसा कपड़ा इतनी सुंदर, ये तो जगन्नाथ जी के लिए होना चाहिए, क्योंकि भक्त का, भक्त अपने प्रेमी के लिए सोचता है, ये दर्जी जरूर था लेकिन जगन्नाथ जी का चिंतन कर रहा था। और इसने इतने सुंदर तकिया बनाए, और हुआ क्या, चिंतन करने लगा, काश, ये चिंतन कर रहा है दिल्ली में बैठ करके, और जगन्नाथ जी पोहंडी हुई, उसी वक्त रथ यात्रा का समय भी था, पोहंडी कहते हैं जब जगन्नाथ जी अंदर से बाहर निकलते हैं रथ में बैठने के लिए, जिसमें जगन्नाथ जी पूरे के पूरे क्या है, मदमस्त है वृंदावन के वियोग में, और राधा ज्वर मदिरा, राधा रानी के जो बुखार आया है इनको, देखो दो प्रकार के बुखार हैं, एक तो वृंदावन के वासियों के, ब्रजवासियों के वियोग में भगवान को क्या है बुखार आया है, उनका दर्शन करना चाहते हैं, तप रहे हैं पूरा पूरा। दूसरा एक भक्त था, भक्त माधव दास, वो भी उड़ीसा का ही, वो इतनी भक्ति करता था सखा भाव में जगन्नाथ जी की, और कभी कभी तो जगन्नाथ जी उससे बोलते थे चल चोरी करने चलते हैं, बोले किस चीज का अभाव क्या है आपको, बोले नहीं थोड़ा कटहल चोरी करके खाएंगे, बोले अब आदेश दे दो राजा सारे कटहल बाग के ले आएगा, ये चोरी करने की क्या जरूरत है, मेरे को गलत काम करवाता है, दोस्ती थी सखा भाव, बोले देखो तेरे को चलना है तो चल नहीं तो मत चलो। तो चोरी, चोरी की कला सिखाते थे, और बोलते थे जो मजा खुद कटहल को चोरी करके खाने में है वो इतने ढेर सारे पड़े हुए में नहीं है, फ्री फंड का माल मिल जाए ना ज्यादा आनंद, बोलो भगवान बोलते इतना फ्री फंड में मिलता है आनंद नहीं आता है, बोले चोरी करके जो आनंद है, बोले मैं, बोले चिंता मत करो तुमको कोई पिटाई नहीं लगाएगा, इतने मतलब इतने गूढ़ उनके अंतरंग भक्त थे। एक दफे बीमार पड़ गए, ऐसी बीमारी आई कि ये अपना भोजन भी नहीं बना पा रहे थे, बिस्तरे पर लेट गए, तो काफी लोग आए जो इनको जानते थे हम आपकी सेवा कर दें, लेकिन ये बिल्कुल इतने खुददार किस्म के कुछ भी सेवा नहीं लेते थे। और हुआ क्या, अब तो खाना पीना बंद हो गया, तो इनका वीकनेस आते आते बिल्कुल मूर्छा पर आ गए, एकदम एकदम दुबले पतले, और इनको दस्त का रोग लग गया था, उल्टी और दस्त का, उससे और ज्यादा क्या हो गए थे, रुग्ण हो गए थे। तो इतने में जगन्नाथ जी आए, और जगन्नाथ आकर, हाँ इनने बोला कि जगन्नाथ जी को सेवा करनी होगी तो करेंगे, मैं किसी से सेवा नहीं लेता। अब जगन्नाथ जी इनके पास आए और इनका मलमूत्र पूछा, पूरा उस कपड़े को धोया, कितनी दुर्गंध आ रही होगी, फिर से नए कपड़े लगाना, बिस्तरा साफ करना, इसको उठा के उधर रखना, फिर उठा के यहां रखना, और इनको पानी पिलाना। इतने में इनको होश आया तो देखे जगन्नाथ जी सेवा कर रहे हैं। बोले जगन्नाथ आप तो सर्व समर्थ हैं, जब इस टाइप की सेवा मेरी कर रहे हैं, आप तो मेरा रोगी दूर कर सकते हैं, जब आप इतना कुछ कर रहे हैं तो मेरा रोगी दूर कर देते, इतना करना ही नहीं पड़ता। बोले कि अपने जो पूर्व जन्म के बड़े जो कर्म है उसको तो भोगना ही पड़ता है, मैं तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हारे पास भी आया, तुम्हारी सेवा भी कर रहा हूं, मैं तुम्हारे कर्म भी काट रहा हूं, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन तुमने ये कह दिया, मेरे भक्त ने कह दिया, आप तो सर्व समर्थ हो, क्या इतना ऐसा कर सकते हो तो रोग दूर नहीं कर सकते हो, अब मैं क्या करूंगा, 15 दिन का कष्ट और बचा था तुम्हारे भाग्य में, इसलिए अब वो कष्ट मैं अपने शरीर में ले लूंगा। इसलिए भगवान क्या पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं स्नान यात्रा के बाद। उस माधव दास का कष्ट भी भगवान ने लिया। और यहां ये जो भक्त परमेश थी, ये सोच रहा है, फिर जब भगवान बाहर आए और ये सोच रहा है कि अगर भगवान का जगन्नाथ जी को एक तकिया चला जाता या उनको मैं सेवा कर पाता, मेरा जीवन धन्य हो जाता। हे जगन्नाथ, मैं इतना गरीब, इतनी दूर आ नहीं पाया, क्या करूं। इतने में क्या हुआ, जगन्नाथ जी बाहर आ रहे हैं और एक तकिया, इसी का तकिया उसने देखा, उनका तकिया फट गया है, और पुजारी लोग सोच रहे इस तकिया को कैसे बदलें, वो निकाल करके जगन्नाथ जी ने ये तकिया नीचे लगा लिया है, ये देख रहा है। इतने में इसका क्या हुआ, वो जो अंतः लीला सोच रहा था, बाह्य दशा में आ गए, इनका तंद्रा भंग हो गई और ये देखने लगे तो सचमुच में दिल्ली से तकिया गायब हो गया था एक, और वहां जगन्नाथ जी ने क्या किया, अपने नीचे रख लिया था। ये तो बिल्कुल जगन्नाथ जी को अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, हाथ जोड़ा है, प्रभु आप कितने वो हैं। इतने में सेवक को लगाया राजा ने, उससे लेके आओ मेरी तकिया। तो एक ही तकिया थी, ये एक तकिया लेकर के गया राजा के पास। राजा ने बोला, कहां मेरी दोनों तकिया, मुझे पता है तेरे को वो तूने किसी को बेच दी है ज्यादा धन के लालच में। अरे ये झूठ बोल रहा है, तू कह रहा है कि मेरे भगवान जगन्नाथ जी ने यहां से इतनी दिल्ली से वहां कितनी दूर है, कैसे वो ले सकता है, तू गया। बोले नहीं गया। तो फिर अब जो अभक्त है वो कैसे समझ सकता है इस बात को, बोलता है ये बदमाश है, दुष्ट है, इसको बंदी बना लो, इसको तब तक कोड़े मारो, इसको खाना पीना, इसको इसके सारे शरीर में बेड़ियों से बांध दो। ऐसा ही किया, देखता हूं इसका भगवान कहां है। और वो जो है भक्त परमेष्ठी, पूरा बांध बूंद करके उसको जेल में डाल दिया गया, और जेल में जाके ये जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, ये क्या बोलते हैं, भगवान का गान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हे जगन्नाथ, आप किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। तो इसको नींद आ गई, तो जगन्नाथ जी आए वहां, और आ करके ये कुबड़ भी था साथ में, कुबड़ा भी, कुष्ठ रोग भी था। तो क्या किए, सबसे पहले जगन्नाथ जी ने बेड़ियां खोली, बेड़ियां खोल के अपने दोनों चरण इस भक्त परमेष्ठी के सर पे रख दिए, और सर पे चरण रखते ही इसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, ये सबसे सुंदर बन गया, ये जेल खुल गया। और बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हर प्रकार से सम्मान होगा। ये भी प्रणाम करता है, जगन्नाथ जी वहां से निकल गए, इसकी नींद खुल गई, इस नींद खुली में देख रहा है सुंदर हो गया है सारा कुछ। वहां जगन्नाथ जी राजा के सपने में, राजा वहां पर उसके सपने में गए, बोले दुष्ट तूने मेरे भक्त को बांधा, तेरे को पता है मैं वही तकिया वाला हूं जिसने तकिया यहां से, वही जगन्नाथ हूं मैं, और मैंने ही तकिया लिया, तेरे को दिखाना है। सारा कुछ कह के उसको बोले कि तुमने मेरे भक्त को बांधा, तुरंत मेरे भक्त को खोलो, उसकी पूजा करना, और पूजा ही नहीं, उसको हाथी में बिठा करके पूरे नगर में उसका यश फैलाना, और बाद में अपनी राजगद्दी पर उसको बैठाना। यदि ऐसा तूने नहीं किया तो तेरी सारी नस्ल, जितनी कौम है, उसको खत्म कर दूंगा मैं, और तेरे को भी जो है टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये डराया भी, और 8-10 बेत मारे भी भगवान ने उसके पीठ पर, ये पूरा पूरा वर्णन है। और इतने में जगन्नाथ जी गायब, इसकी नींद खुल गई, ये बोलता है सच है कि नहीं है, पीठ में देखता है सचमुच में कोड़े लगे हुए हैं, बोलता है ये तो उसी का भगवान है, ये तो साक्षात भगवान है, आए हैं। अब तो भागा भागा गया, बोले नस्ल खत्म कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, सारा अस्त व्यस्त कर देंगे, और वहां जाके देखता है, बोले मैं क्या खोलूंगा, भक्त तो पहले से खुला हुआ है, ये तो पहले से ज्यादा सुंदर बना हुआ है। अब तो उसने साक्षात दंडवत किया, मुझे माफ कर दो, और सारे राज्य में ढिडोरा पिटवाया, उनका अभिषेक किया भक्त का और जुलूस निकाला। और पता है ये जो राजा था, मुसलमान राजा, क्या गा रहा था? जय भक्त परमेष्ठी, जय भक्त परमेष्ठी, भक्त परमेष्ठी, जय भक्त परमेष्ठी, ये गा रहा है। बताओ, वो ले जाते ले जाते शोभा यात्रा में वहां जय जगन्नाथ नहीं गा रहे, और जगन्नाथ ऊपर से हंस रहे हैं और बहुत प्रसन्न है एकदम, आज मैं बिल्कुल खुश हूं, मेरे भक्त का यश। और इस प्रकार से फिर वो राजगद्दी में भी बिठाया, हर दिन उसकी अग्र पूजा होने लगी परमेष्ठी की, और दोनों बाद में फिर भगवान के धाम वापस चले गए, वो राजा भी और वो भी। तो भगवान जो है, मन से की हुई सेवा भी, थोड़ा सा भी हृदय से, वो भगवान इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, देते हैं। तो वसुदेव जी ने जो है वो उत्सव मनाना चाह रहे थे, उत्सव उनके हृदय में तो इतना चल रहा था, यदि बाहर होते क्या कर देते, लेकिन बाहर आने के बाद भी वो पूरे दिल से नहीं कर पाए। क्यों? भगवान का जो नामकरण है गौशाला में मनाना पड़ा, क्योंकि कंस के भय से, कंस सारे उनको मार रहा था। तो इससे कितना कुछ इसमें कहने को है। और वसुदेव जी का नाम यहां पर आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी इसलिए है क्योंकि जब वसुदेव जी जन्म लिए थे तो उस वक्त आनक और दुंदुभी, ये दो वाद्य यंत्र, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये नाम है, एक आनक, जैसे हारमोनियम होती ना, एक आनक भी एक वाद्य यंत्र है, और दुंदुभी, देवताओं ने इसको खूब बजाया था, नगाड़े भी बजाए थे, इसलिए इनका नाम ही रख दिया गया। वो इतनी देर बजाते रहे, जैसे कभी कभी तालियां बजती ना, तो बोलने के बाद भी क्या करता है आदमी, तालियां रोकते नहीं, वो तालियां चलती रहती हैं, तो ये बजाते ही जा रहे थे, तो इसीलिए उनका नाम रख दिया गया आनक दुंदुभी। वसुदेव जी का दूसरा नाम आनक दुंदुभी, क्योंकि वसुदेव के आने से, एक भक्त के आने से, क्योंकि जिनके घर में भगवान प्रकट होंगे उनका इतना देवी देवता समझ गए, उनका भी इतना स्वागत किए, तो अब भगवान आएंगे तो स्वागत नहीं करेंगे हम सब उनका? बोलो, संसार में लोग पिक्चरों का डायलॉग करते हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा तो भगवान का स्वागत नहीं करोगे? बोलो, स्वागत नहीं करोगे जगन्नाथ जी का? कितने लोग करना चाहेंगे बताओ? जन्माष्टमी में आ रही है, कितने लोग स्वागत करना चाहते हैं? पूरा पूरा हाथ खड़े रखिए अभी जरा, तो लग जाइए। जो वैष्णव लोग आपको सेवा दें, बोलो 10 हुंडी करूंगा प्रभु जी, 20 हुंडी करूंगा, मैं पूरे 1.5 महीने लगे रहूंगा। हुई तो हुई, भगवान फिर हेल्प करते हैं जो हृदय से करता है, जितना हो सकेगा मैं सबको लगाऊंगा। तो इससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा, हुंडी करते करते कुंडी खुल जाएगी, बस धाम चले जाओगे। ठीक है, तो यहीं पर मैं विराम देता हूं वाणी को, तो कुछ त्रुटि रही होगी तो क्षमा कीजिएगा। और ये भजन का अर्थ इस प्रकार से है, अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, इसलिए गाया ये कि हे माधव, हे गोपाल, मेरे मंदिर में जागिए। कैसे जागिए? नव अरुण सम जागो हृदय मम, जैसे सूरज पूरब दिशा से उदित होता है, निकलता है और सारे संसार को आलोकित कर देता है, उसी प्रकार हे माधव, हे गोपाल, मेरे हृदय में भी जन्माष्टमी के रूप में आप क्या हुए, सबसे पहले मेरे हृदय में आइए। भगवान कहां आए? वसुदेव के हृदय में ही आए, तो आप भी मेरे हृदय में जागिए हे गोपाल। और आप अगर हृदय में हैं और आप प्रकट हो गए तो क्या होगा, फिर मैं भी जो है क्या कर सकता हूं, आपको वास्तव में देख पाऊंगा। इसी को बोलते हैं हृदय में भगवान। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जो षड, ये जो 6 पुत्र देवकी के सबसे पहले, इनको ये जब मरे, इन ये खत्म हुए तभी जो है बलराम जी आए, फिर बलराम जी ने आसन को शुद्ध किया, बैठने योग्य बनाया भगवान के, ऐसी सेवा करी, फिर जो है कृष्ण अष्टम रूप में आए। तो ये कितना सुंदर है, सुंदर गिरधारी लाल, हे सुंदर गिरधारी जी, अति प्रिय गिरधारी लाल। और यहां गिरधारी शब्द क्यों आया है, क्योंकि आप तो सारे बोझ को उठाने में समर्थ हो, मेरा बोझ तो आपके लिए बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं है, ये भाव है। आगे माधव कृष्ण गोपाल, हे माधव, हे लक्ष्मी के पति, हे सर्व आकर्षक, हे गौओं को पालने वाले, नए नए घनाए बेतारी बादल वर्षा ऋतु की मूसलाधार वर्षा के समान मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। कृपया जागो, कृपया जागो, हे तरुण किशोर, हे सांवले श्याम, हे श्री राधा जी के अति प्रियतम, कृपया मेरे हृदय में जागो, कृपया जागो, हे ग्वालों के पालन करता। मतलब कितना सुंदर प्रार्थना है, आप जागिए मेरे हृदय में। यही जन्माष्टमी है जब हमारे हृदय में भगवान लाइव हो जाएं। और आगे बोलते हैं, हे यशोदा जी के परम प्रिय, आओ कृपया आ ही जाओ। हे माखन चोर, हे मेरे प्राणनाथ, कृपया आओ। हे तरुण बालक, आपको पता है भगवान 1 से 5 साल में कौमार अवस्था में रहते हैं। कौमारम आचरेत प्रज्ञ बोलते ना, कौमार लीला करते हैं वो। 5 से 6 से 10 तक क्या करते हैं, पौगंड लीला करते हैं। और 11 से 15 तक भगवान किशोर लीला करते हैं। और 16वें में युवा अवस्था आ जाती है उनको, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है भगवान में। ऑलवेज 16 years old, नित्य किशोर, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं। तो इसलिए हे किशोर, हे तरुण बालक, ब्रज के धाम में राधा जी को अपनी बाईं ओर प्रकट करके कृपया मेरे हृदय के अंदर आ जाओ। हे ब्रज के रक्षक, हे मेरे रक्षक, आप आ ही जाइए, आप मेरे हृदय में जाग जाइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद बहुत बहुत। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कहना, कुछ याद आ रहा हो कुछ आपको भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल था नहीं है, बोलो, बोलिए जी। क्यों नहीं होंगे आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते जाइए, फिर से जाग जाएंगे। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। हरि बोल, हरि बोल जी। जिसको भी दूसरे से नफरत हो रही है, दूसरे के गुणों पर ईर्ष्या हो रही है, अभी वो भक्त नहीं बना, अभी मनुष्य भी नहीं बना हो, याद रखिएगा। लेकिन हमें, हमारी भी कसौटी ये है, अगर किसी को ईर्ष्या हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है, तो आप बिल्कुल भी व्यथित और वो मत होइए। उनको धन्यवाद भी दीजिए कि कुछ वो इस प्रकार से कह के मेरा स्टेमिना भी चेक कर रहे हैं कि मैं हर स्थिति में प्रभु को याद कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, या ऐसा तो नहीं है कि सब गुणगान करेंगे मेरा तभी मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप पाऊंगा। अब नेगेटिव, पता चला पंखा बंद हो गया, पता चला लोग मेरे को ज्यादा सम्मान नहीं दे रहे हैं, मुझे मेरे को माला नहीं दे रहे, तो इस स्थिति स्थिति में भी मैं मंदिर आता हूं कि नहीं आता हूं, मैं माला कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, तो मेरा भी टेस्ट है ये, तो उसके थ्रू टेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी में आनंद है, बाकी लड़ाई में तो कोर्ट केस है, फिर और कुछ नहीं है, भागा दौड़ी है बस। भगवान जिस दिन नाराज हो जाएंगे ना सचमुच में, उस दिन हमारा पता ही नहीं मिलेगा। वो तो माता पिता की तरह हैं, सब कुछ माफ करने के बाद भी वो नाराज नहीं होते। किसी ने बोला प्रभु जी मेरा ऐसा हो गया, भगवान नाराज चल रहे, मैंने कहा अगर वो नाराज है तो इतना ही क्यों किया, फिर तो समूल नष्ट कर देते तेरे को, ये तेरे कर्म ही हैं, बहुत कम रूप में तेरे को दिए हैं, देना तो ज्यादा था, ये थोड़ा बहुत भक्ति कर रहा है तो उसको कट करके, जैसे जगन्नाथ जी खुद अपने ऊपर बुखार ले लिए 15 दिन का, फिर ठीक है। आप चाहोगे जगन्नाथ जी आपका बुखार लें जी? क्या बात है, परमेश्वर से भी आप तो माधव दास से भी ज्यादा बड़े भक्त हैं फिर आप तो। हम तो नहीं चाहेंगे कि जगन्नाथ जी हमारा बुखार लें, हम अपने कर्मों को खुद ही भोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग बड़े स्वार्थी हैं, हम तो भगवान तक को ताक में रख दें अपने सुख के लिए। जी थोड़ा आगे आके बोलिए। जी बिल्कुल, लेन देन का हिसाब रहता है। प्रेमा भक्ति में व्यक्ति गिनते रहता है 64 माला हुई कि नहीं हुई, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। षड गोस्वामी भी 108 माला 64 माला करते थे संख्या पूर्वक गिन करके, जबकि इतने उन्नत भक्त थे वो भी गिन के कर रहे हैं। तो हमें भी गिन के करनी चाहिए। आप कितनी ही प्रेमा भक्ति में हो तो आपको देखना चाहिए मैं मंगल आरती जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, कथा सुनने बैठ रहा हूं, अपनी भक्ति की चीजों को गिनना चाहिए, तभी आप प्रेम में हैं। आप सोच रहे हैं बस वो तो कुछ गिनता ही नहीं, सोया भी हुआ है तो गिनता ही नहीं है वो, बस कथा नहीं भी सुनी सोया हूं प्रभु जी प्रेम में था मैं, ऐसा नहीं। जो प्रेमा भक्ति में होगा वो अपने आप 3 बजे उसकी नींद खुल जाएगी। जी तो ये तो खुशी की बात है ना हमारे लिए, अगर वो नहीं होते तो हम जीते कहां फिर। ऐसे भले लोग नहीं होते जो प्रेम देते हैं तो फिर हम कहां जी पाते। बिल्कुल सच बताऊं आपको, अगर आप दिल से माला करने लगोगे, आप नहीं चाहोगे फिर भी आपका यश फैल जाएगा। भक्त अपना यश नहीं चाहता है वो फैल जाता है, वो कृष्ण दे देते हैं सब कुछ दे देंगे, भागेगा यश से फिर वो। तो कहीं ना कहीं हमारी भी इच्छाएं रहती हैं इसलिए हम देखते रहते हैं, उसको ज्यादा दे दिया मेरे को नहीं दिया, समझ रहे हैं? ये हमारी भी प्रॉब्लम है। हमको हम नाम कम जपते हैं ये ज्यादा देखते हैं उसको यश मिला, ओ देखो उसको तो ये हो गया वो हो गया, समझ रहे हैं? तो इसीलिए अपना ध्यान ज्यादा माला पर देना है और भगवान के दर्शन में देना है, कथा सुनने में ध्यान देना है, बाकी चीजें छोड़ दो, वो अपने आप ही जो चीज आप सोच रहे हो सब अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है? ये है तो दोष अपने अंदर भी हैं बहुत सारे, ढेर सारे। संसार तो दोषों का खजाना है, लेकिन गुण तो गुण भी तो है ना। हरे कृष्ण निकालिए माला और शुरू कर दीजिए बस। जो तू भजन करे दिन राती श्याम सुंदर बन जाए साथी, शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। ठीक है बोलो हरे कृष्णा। तो दुखी नहीं होना है, आराम से भजन करो बस हो गया, सुखी हो जाओ, सुखी दास। हरे कृष्णा मेरा।